الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وعلى وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. على سرور موضونات متكئين عليها متقابلين. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صلى الله عليه وسلم دعائے من ابدا على حبيبك من جانت بالبصر. موضوع سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ سونے کے تاروں سے بنے ہوئے تختوں پر تکیہ لگائے آمنے سامنے بیٹھے ہوں. یہ وہ ارشاد باری تعالیٰ ہے جو اللہ کریم کا انعام ہوگا. وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ, چونکہ بنیادی طور پر تین حصوں میں مخلوق تقسیم ہوگی, ایک دائیں ہاتھ میں, ایک بائیں ہاتھ میں, اور ایک وہ لوگ ہوں گے جو آگے ہوں گے اور عرش اللہ کے سامنے ہوں گے. اور یہ وہ ہستیاں ہیں جنہیں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے کہ صلۃ من الاولین و قلیل من الاخرین, کہ جو پیشتر گزر چکی ہیں ان میں کثیر تعداد اور جو بعد والے ہیں ان میں تھوڑے لوگ ہوں گے. لیکن اللہ کریم کا احسان ہے, کرم ہے کہ یہ عطا اللہ کریم نے عام فرمائی. لیکن جب آخر میں اس کی کمی کی یا اس موضوع پر بحث کریں گے تو یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ جو ایمان کی کمزوری ہے, انحطاط ہے, توکل کی کمی ہے, اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی دوری ہے, یہ وہ سارے اسباب ہیں جو بندے کو حق کی طرف جو اس کا چلنا ہے, حق کا جو اس کا ماننا ہے, اس پر جو عمل کرنا ہے, اس میں جتنا تجاوز ہے اتنی کمزوری پیدا کرنے کا سبب بنتے ہیں. پھر دوسرا نقطہ میں نے جو عرض کیا تھا وہ یہ ہے کہ جب بات اولین کی آتی ہے اور مقربین بارگاہ الہی کی انعام کی بات آتی ہے اور مقربین کے موضوع پر بات آتی ہے, تو اس میں وہ لوگ جو خیر القرون جنہیں نصیب ہوا, جنہیں معیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہوئی, وہ معیت کا نصیب ہونا ایمان کی ان بلندیوں پر پہنچا دیتا ہے پھر ان جیسا اور ایمان کسی مخلوق میں ہے نہیں. بعد از انبیاء صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ایمان بلند. اب ایمان کی بلندی کیا ہے؟ اللہ جل شانہ کا ماننا, اس کے حکم کی تعمیل, اور اس ماننے اور اس تعمیل میں اس درجے کا صدق ہونا کہ ایسا پھر کسی اور کا ہے. اسی لیے حدیث شریف میں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابی رسول اگر ایک مٹھ جو, پھر فرمایا یا آدھ مٹھ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے, اور غیر صحابی جو ہے اودھ پہاڑ جتنا سونا خرچ کرتا ہے, تو اند اللہ اس آدھ مٹھ جو کی جو ہے شرف قبولیت کا درجہ زیادہ ہوگا, اللہ کریم کے حضور وہ آدھ مٹھ جو زیادہ مقبول ہوگا. اس لیے اللہ کریم کو احتیاج نہیں ہے, قادر مطلق ہے, ہر شے اس کی ہے, اور جس شے کو ہم قیمتی سمجھتے ہیں, چاہے سونا ہو چاہے ہیرے جواہرات ہو, کوئی شے جسے ہم قیمتی سمجھتے ہیں اس کی مخلوق ہے. اس کا قیمتی ہونا یہ وصف اس کو اللہ نے عطا فرمایا. تو جب بات ایمان کی آئے گی, اخلاص کی آئے گی, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث ہونا اور جن ہستیوں کو آپ کی معیت نصیب ہوئی وہاں اس درجے کی حدت ایمان کی نصیب ہوئی کہ نہ صرف وہ مستفیض ہوئے بلکہ تابعین اور تبع تابعین تک یہ حصہ چلتا گیا. شرط کیا تھی؟ کوئی الگ سے محنت مجاہدہ ضروری نہیں تھا اس درجے کے. گو ان مدارج کے لوگوں نے اتنی مشکلات دیکھی ہیں جن کا ہم سوچ نہیں سکتے, ایسی ایسی سختی سے گزرے ہیں جو انسانی حیات میں مثال بن گئی कि इत्तबा में इस दर्जे की कुर्बानी अगर कोई देने वाले हैं तो वो हस्तियां हैं जिन्हें माहियत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अलग पहलू है। लेकिन वो जो दर्जा नसीब हुआ बहालत ईमान, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक नज़र का नसीब होना या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र मुबारक का साहिब ईमान को नसीब होना, दर्जा साहबियत पर पहुंचा। इसलिए उन्हें मैयत नसीब हुई इमामुल अंबिया की, उस जात की जिस जात को अल्लाह करीम ने रहमतुल लिल आलमीन पैदा फरमाया। हम इजहार मोहब्बत में भूल जाते हैं कि हदूद व कयूद इस दर पर है और इन हदूद व कयूद का इरशाद फरमाए अल्लाह रब्बुल आलमीन। इजहार मोहब्बत भी जहां पाबंद है, उन्हें माइयत नसीब हुई उस दर की, तो उस माइयत से वो दर्जा ईमान नसीब हुआ कि ऐसा फिर और किसी को ईमान नहीं। फिर इसी बात को जब हम देखते हैं तो अकामाते दीन हर पहलू से सारे के सारे वही हैं, एक जेर जबर की कमी के बगैर। कलाम जात की वही है एन जो सहाबा कराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने लबाए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से समात फरमाई, कोई कमी बेशी। वो दर्जा जो नसीब हुआ उस दर्जे के लिए बेशक बेशुमार इबादात बेशुमार कुर्बानियां, लेकिन उस दर्जे के लिए मेहनत जाती नहीं, उस मौके का नसीब होना है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हजूरी का है। क्योंकि तारीख सहाबा में ऐसी हस्तियां भी मिलती हैं जिन्होंने इस्लाम कबूल किया पेशतर इसके कि कोई इबादत कर पाते वो दर्जे शहादत को जा पहुंचे। तो जिंदगी और दुनिया से मुंतकिल होने के दरमियान इतना वक्त ही नहीं रहा, दायरे इस्लाम में दाखिल हुए फिर इतनी फुर्सत मुयस्सर न थी कि इबादत कर सकते, लेकिन दर्जे सहाबियत पर वो भी फायदा। सारी मखलूक जो है बुलंद दर्जे के ईमान पर पहुंच जाए, वलायत के आला दर्जों पर पहुंच जाए, और इसमें तबा ताबीन और की जमात और ताबीन की जमात इसकी सुरखेल हो और सब के मदारज जमा किए जाएं, तो वो सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दारे इस्लाम में दाखिल हुए और दायरे दुनिया से पर्दा फरमा गए, उनकी जूती की खाक के बराबर नहीं हो सके। तो वो क्या पहलू है, वो कौन सा हिस्सा है, फिर जब आप इसको देखेंगे फिर ईमान पर बहस करेंगे। तो ईमान क्या है, क्या किसी ने कोई शय कंधे पर उठा रखी है, कहीं उसने किसी जगह कफल करके रखी हुई है कि ताले में उसने बंद करके रखी हुई संभाल के नहीं। ईमान एक कैफियत और एक हाल है और वजूद इंसानी में मकाम जो है कैफियत का या जो कैफियत का घर है वो कलब इंसानी है। जिस कलब अथर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुरान करीम जिक्र फरमाता है कि नजूल कुरान आपके कलब मुबारक पर हुआ, वो कैफियत की हामिल जगह है वजूद इंसानी। जब मैयत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसीब हुई तो सुम्मा तलीलु जुलूदुम व कुलूबुम ला ज़िक्रल्लाह, कुरान करीम में फरमाता, तो जाहिर से जिल से लेकर नहा खाने दिल तक एक एक शय अल्लाह के नाम से ऐसी मुज़य्यन हुई कि उसके जिक्र में मैं हो गई, उसकी याद से वाबस्ता हो गई। अब समझ आती है कि सारे अकामात वही हैं, तो खैरुल कुरून की जो अजमतें आपने बयान फरमाई हैं, फर्क क्या है, इन कैफियत का फर्क है। जिसे कैफियत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुफिया बयान करते हैं। अब जब आखिरीन अवलीन और आखिरीन की बहस आती है, तो मैंने कल भी अर्ज किया था कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जमाने मुबारक की अजमत बयान फरमाई, बहुत बड़ी दलील है कि बुलंद दर्जे के हामिल लोग कौन होंगे چونکہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت تو وہ مقربین بارگاہ الہی ہیں جنہیں اللہ کریم نے چن لیا, اپنی مخلوق کی رہنمائی کا سبب بنایا. کتنی ایسی ہستیوں کے ذکر قرآن کریم میں ملتے ہیں, کیسی کیسی باتیں, کیسے کیسے اللہ کریم کی عطا اللہ جل شانہ نے ان ہستیوں کے حوالے سے بیان فرمائی. وہاں بات نہیں ہے, جب بھی بات آئے گی بعد از انبیاء بات آئے گی, اور ان جماعت سمیت اس عظیم ترین جماعت جسے اللہ نے پسند فرمایا مخلوق کی رہنمائی کے لیے, اس جماعت کے ساتھ جو منسلک حصے آئیں گے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب نصیب جنہیں ہوگا وہ ہستی آئیں. اور اس پر یہ بحث نہیں ہے کہ اس سے پہلے اگر کسی پر بات آئے تو کیا, لیکن جو عظمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے کی بیان فرمائی ہے خیر القرون کرنی میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیام قیامت تک کا وقت داخل ہو جاتا. تو جب اس بات کو لیں گے علماء کرام کی جو تشریحات ہیں انہیں دیکھیں گے تو سمجھ آتی ہے کہ اولین کے جو کثیر جماعت ہے مقربین انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ, پھر وہ لوگ ہیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین, تابعین تبع تابعین, آخرین میں جب بات آتی ہے تو اللہ کریم کا کرم اور احسان کہ اللہ کریم نے یہ عطا بند نہیں فرمایا. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات عام ہیں, رسائی ممکن ہے, اسی طرح کیفیات بھی عام ہیں, اور یہ بہر بھی ہر ایک کے لیے ممکن ہے ممکنات میں سے. پھر جسے اللہ کریم نے پیدا فرمایا اس کی مقصد پیدائش عبادت بیان فرمائی. اب اس عبادت کے انعامات میں جس راہ کا انتخاب کیا, جو حصہ نصیب ہوا, اس پر اللہ نے کیا انعام فرمائے, پھر یہ وہ تقسیم. اس لیے جب اس نقطے کو ہم بحث کریں گے, سمجھنے کی کوشش کریں گے, اتنی ہی اہمیت اختیار کرتی جائے گی ان کیفیات کا حاصل کرنا, جتنا ظاہری پہلوؤں میں ہم دین پر عمل کر رہے ہیں ان سارے ظاہری پہلوؤں کی بنیاد نیت پر ہے. اور نیت کہاں ہے, میں نے عرض کی کہ کیفیات کا گھر قلب انسانی ہے. جب یہاں اللہ جل شانہ کا نور نصیب ہوتا ہے تو ایمان مضبوط ہوتا ہے, اخلاص بڑھتا ہے, نیت ترقی پاتی ہے, اور ایک مٹھ جو ظاہری یا دنیا کی قیمت میں ایک پہاڑ برابر سونا سوچتا کوئی نہیں, لیکن یہ وہ در ہے جو خالق کا در ہے. وہاں دنیا کے اصول جو ہیں ان کا نفاذ نہیں ہے, کیونکہ وہ مالک کل کائنات ہے, ارض و سما کا ایسا مالک جو چاہے وہ ہوتا ہے. کن فیکون, اتنی ساری بات, اس نے کیا چاہا. پھر جب یہاں بات کی جا رہی ہے تو ایک اور نقطہ عرض کرنا چاہتا, ابہام نہیں ہے اس فرمان میں, حالانکہ یہ کچھ ہوا نہیں ہے, یہ حال نہیں بیان فرمایا جا رہا, اس پر مستقبل کا صیغہ آئے گا, لیکن فرمان کس کا ہے؟ اللہ رب العالمین کا. تو یہ بات یقینی ہے ایسا ہوگا. اب جب ایسا ہوگا اور جن جماعتوں کی بات ہو رہی ہے ان جماعتوں کی جو کارگزاری کا موقع ہے, جو اعمال کا وقت ہے, وہ کون سا ہے, تو یہ بات بھی یقینی ہے کہ جس دار فانی میں ہم اپنی شہادتیں پوری کر رہے ہیں ہم نے زندگی کو کیسے دیکھا. ہمیں جو اللہ کریم نے ایمان عطا فرمایا اس نظر نے, جو جسے قرآن کریم افدا, وہ ذریعہ جو افدا کا اللہ کریم نے عطا فرمایا, جب اس میں نور ایمان نصیب ہوا ہے تو پھر ہم کیسے دیکھ رہے ہیں. اگر تو صرف ان ظاہری آنکھوں سے ہی دیکھنا ہے تو پھر وہ کمزوری, جیسے ڈاکٹر کے پاس اینک لگوانے جاتے ہیں نا, تو ہند سے پڑھنے کو کہتا ہے, پھر وہ دیکھ کر کہتا ہے نہیں اتنے نمبر کی اینک لگی, تو یہ کمزوری اور یہ نظر یہیں تک رہے گی. لیکن نور ایمان قلب کی وہ آنکھ جو بصیرت کی صورت میں ہے وہ عطا فرمائے, तो फिर ये बारीकियां समझ आती जाती है। अब जो हिस्सा मैंने आज तलावत करने की सआदत हासिल की, आला सरूर मौजूनात मुत्तकीन अलैहा मुत्तकाबिलीन, यहां जब बात आती है ना सोने के तारों से बने हुए तख्तों पर तकिए लगाए आमने सामने बैठे होंगे, इनाम पर बयान फरमाया। जिस तरह तकसीम यकीनी है, इसी तरह फिर उस तकसीम में जिन्हें यह नसीब होगा उनका इनाम भी यकीनी है। यतूफ़ु अलैहिम विल्दान मुखल्लदून, नौजवान खिदमतगार हमेशा एक ही हालत में रहने वाले उन पर फिरते होंगे, वो नौजवान जो अहले जन्नत की खिदमत पर मामूर होंगे, खिदमत के लिए पैदा किए गए, वहीं जन्नत में होंगे, मुकल्लफ मखलूक मदार दुनिया में नहीं आए, वो खिदमतगार होंगे। अब बात ऊपर सोने की आई है, दुनिया में सोने के लिए, मालो दौलत के लिए, जेवरात के लिए जिंदगियां सरफ कर दी, वहां ये सारे हिस्से जिसके लिए लोग अपना हर कुछ खो बैठते हैं और इस सोने की चमक को पाने के लिए जाते हैं, उसकी हैसियत अमूमी होगी और वो खिदमत पर मामूर होगी। बेअकवाब व बारीक, यानी आबखोरे और आफताबे, वकासम मईन, और साफ शराब के गिलास ले लेकर, ला युसुद्दऊन अन्हा वला युनज़िफून, न उससे उनको दर्द सर होगा और न उससे अकल में फतूर आएगी। जब जन्नत के इनामात पर हम बात कर रहे हैं तो ये बात समझने की है, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ हमीदा कुरान करीम बयान फरमाता है, मुबश्शिरम व नज़ीरा, जब यहां बात आती है तो बशारत देने वाली ज़ात। अब एक बशारत जब अमूमी पहलू पर लेते हैं वो मौके की लेते हैं कि क्या हो गया है उसकी खुशखबरी है, नहीं, जब यहां बात आएगी तो जो वारिद होगा, जो नतीजा होगा, हकीकी खुशी, यहां तो हम एक लम्हे को खुश होते हैं, अगले लम्हे को रो रहे होते हैं, एक लम्हे को कामयाबी समझ रहे होते हैं, उसी अमल में अगले लम्हे को नाकामी समझ रहे होते हैं। हतमी जो कामयाबी नसीब होगी और जो इनामात नसीब होंगे, फिर मिजाज इंसानी को देखिए, जब नफ्स अपना नफ्स वार करता है, शैतान धोखा देने की कोशिश करता है, तो यही लज़ात हैं जो इनामात में बयान फरमाई जा रही हैं कि जिन लज़ात के लिए तुम अल्लाह का दर छोड़ रहे हो, उस हुक्म की तामील में वो तुम्हारी खिदमत पर मामूर है। क्योंकि इन लज़ात के हुक्म नहीं है कि इनको अपनी नीयत रखो कि खास नीयत की है इन लज़ात की, नहीं, खास नीयत अल्लाह की इबादत की है। क्योंकि कुरान करीम मकसद तखलीक जब बयान फरमाता है तो इबादत बयान फरमाता है, तो जिन्होंने उस राह का इंतखाब किया ये उनका ठिकाना है, और उस ठिकाने के हालात हैं कि जहां रिहाइश नसीब होगी वहां क्या कुछ है। और दुनिया की जिन चीजों को हम देखते हैं, आप मशरूब में दूध ले लें, दूध का पीना, हर दूसरा घूंट पहले घूंट की निस्बत लज़त कम करता है, और इस कमी में इतना इजाफा होता है कि आखिर दिल उकता जाता है और नहीं पीता। और इसी मशरूब, जो मशरूब भी है खुराक भी है, और कुरान करीम इसकी मिसाल देता है कि कहां से और किस अंदाज से अल्लाह करीम तुम्हें यह मशरूब अता फरमाता है, जिसे गले से उतारना तुम्हें खूब लगता है, इसका घूंट लेना एक फरत अता करता है। तो ये जो खुराक है, एक हद से किसी को ज्यादा दे दो उसकी मौत का सबब बन जाएगी। तो जब जन्नत की जो आसाइश है, जो अताएं हैं, उनकी बात आएगी तो जन्नत में जो अल्लाह करीम की अता है उनमें एक हिस्सा यह है कि हर अगला लम्हा पहले से आला होगा। तो इसी निस्बत से अगर एक घूंट किसी मशरूब का पिया है तो दूसरा गुण जो है जायका कम नहीं करेगा, पहले की निस्बत ज्यादा जायका और ज्यादा फर्त अता करेगा। पहला करीम किया था। अब इस अता को देखते हुए फिर दुनिया की जिंदगी को हम जब देखते हैं, दुनिया के मामूलात को देखते हैं, तो जिसे माजूरी लाग है वो चलते फिरते शख्स को देखकर ये सोचता है कि क्या माजूरी मेरे लिए थी। किसी दुनियावी अता की कमी को, हैसियत की कमी को, मालो दौलत की कमी को देखते हुए दूसरे को, अपने से बुलंद दर्जे वाले को देखता आया, कहता है इसी तरह मिला मुझे नहीं। बात यहां की नहीं है, कल हम जब तिलावत कर रहे थे तो उसमें फरमाया गया था हाफिजातुर राफिया, किसी को पस्त कर देगी किसी को बुलंद कर देगी। हैसियतें यहां की नहीं है, क्योंकि ये इंतहाई कलील वक्त है और आखरत में जब इस वक्त पर बात होगी तो मखलूक ये कह रही होगी कि एक दिन आधा दिन उसका भी कुछ हिस्सा है। और अल्लाह करीम फरमाते हैं काश तुम ये समझते, ये समझ रखते कि कितना कलील वक्त था तुम्हारे पास। फिर जहां की बात आ रही है वहां इख्तिताम नहीं है, दवामी कैफियत है। दोबारा जो जिंदगी नसीब होगी और फिर जिन इनामात की बात हो रही है वहां फिर इनकता नहीं है। अब जब दवामी कैफियत है और हर अगला लम्हा आला है, हर दूसरा घूंट, हर दूसरा निवाला जो है उसका जायका पहले से बेहतर है, तो सोचो ना हर वक्त की बेहतरी और हर वक्त की तरक्की। उसे देखते हुए यकीन मानो सबसे जो बड़ी चीज समझ आती है वो अल्लाह करीम की शान है, उसकी जात है ही ऐसी कि कोई इख्तितामी पहलू नहीं है उसके अता। फिर दुनिया की जो खुराक पर जैसे मैंने बात की कि हर दूसरा निवाला पहले से कम जायका देता है, मशरूब एक हद से ज्यादा या खुराक एक हद से ज्यादा ली जाए नुकसान का सबब हो जाती है, और शराब पीने की अच्छी चीज पानी मशरूब, हमने तो एक ही मतलब शराब का ले रखा है ना, ये दुनिया में इस्तेमाल हो रही है, लेकिन ये जो दुनिया की शराब है ये बनाने में भी तकलीफ दी है, पीने में भी तकलीफ दी है और इसके असरात भी तकलीफ दी है। एक होश खो दिए जाती हैं और लोग समझते हैं जाने हमने कमाल कर दी। कपड़ों का फाड़ देना क्या कमाल होगा, मुंह पर मट्टी मल लेना, स्याही मल लेना क्या कमाल होगा। होश अजमत का हामिल है या होश खो देना अजमत का हामिल होगा। इन्हेतात ही इन्हेतात, बेअमली में इन्हेतात ही इन्हेतात है। लेकिन जब वहां के मशरूब की बात आती है तो फरमाया जा रहा है उससे कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई सर भारी नहीं होगा, अकल में फतूर नहीं आएगा। वला युनजिफून, कोई फतूर नहीं आएगा अकल में। वफाकियात मिम्मा यतहय्यरून, और फल जिनको वो पसंद करेंगे। दुनिया में कितने फल हैं और हम में से कितने लोग हैं जो फलों की अकसाम के मुताबिक खाते हैं जो मुयस्सर आए। पहली बात तो इतने हालात की तंगी आ चुकी है कि हर एक की दस्तरस में ये चीजें रही नहीं, और ये सारी तंगी हमने खुद बनाई है, आमाल हैं, हमारे मामलात हैं, और ये जो गलतियां हैं इनका हिसाब भी जहां जहां ये बात हो रही है वहां हिसाब भी है। तो फरमाया जा रहा है और फल जिनको वो पसंद करेंगे, तो कहते हैं ना मुझे ये फल नहीं पसंद, नहीं, वहां कोई शय ऐसी नहीं होगी जिससे तंगी महसूस हो, हर शय जो है लज्जत देगी, खूबसूरत समा होगा और उसमें कोई रुकावट नहीं होगी, कोई तंगी का पहलू नहीं होगा। जन्नत में हर हिस्सा हर पहलू बाइस मुसर्रत होगा। वलहम तैर मिम्मा यश्तहून, और परिंदों का गोश्त जिस तरह का उनका जी चाहे। अब ये खुराक के सारे पहलू बयान फरमाए जा रहे हैं। दुनिया की तरह अवारजात साथ नहीं है, लेकिन वो करीम है, गफूर रहीम है। दुनिया की जिन चीज़ों को इम्तिहान दिया उनको इनाम अता फरमा दी। हालां इस इम्तिहान में अल्लाह करीम की जो इबादत है और उसका हुक्म मानना है, लेकिन उस हुक्म के मानने के बदले में जिन चीज़ों के हिस्सों और तरतीब का बयान फरमाया वहाँ ऐसी आम फरमाई कि हर शय जो है वह लज्जत अता करेगी, तैत होगी, जैसा जितना चाहेंगे जो चाहें नसीब होगा। और इसी तरह गोश्त जो है ये इंसान का एक मुर्गन इंसानी गजा है, तो फरमाया जिस तरह का उनका जी चाहेगा ऐसा गोश्त होगा। फिर दुनिया में हम जब खाने पीने को देखते हैं तो गोश्त में भी अकसाम है। परिंदे की बात करें तो परिंदों में कितनी अकसाम है, जहाँ शक्ल व सूरत में फ़र्क है वहाँ उनके जायके में भी फ़र्क है, इसी तरह जानवरों में भी है। और कितने ऐसे चरिंद परिंद हैं जिनका जायका दूसरे किसी में उस दर्जे का नहीं हो, लेकिन जन्नत की बात हो रही है, वहाँ के अताओं की, वहाँ की खुराक की बात हो रही है, तो हर शय कमाल हो। तो जैसा चाहेंगे जिस तरह का चाहेंगे ऐसा गोश्त उन्हें नसीब होगा। फिर फरमाया हूर मैन और बड़ी आंखों वाली हूरें, कमसाल लूलुल मकनून जैसे पोशीदा रखा हुआ मोती। अब जैसे पहले खुदाम के जिक्र हो रहा है, इसी तरह हूर वो खादमाएं होंगी जो अल्लाह करीम अहले जन्नत को अता फरमाए। अब जब हम इन अताओं पर बात करते हैं तो एक बात याद रखिए, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत हक इरशाद फरमाई तो तरह तरह से उसकी मुखालफत की, और एक मुखालफत का पहलू ऐसा था जिसमें तमस्खर होता था, तंज होता था। मकसद मुखालफत करना, आपको तकलीफ देना, मखलूक को हक से रोकना होता था। इसी तरह ये जो लफ्ज हूर है इस पर जब बात आती है तो हमने इस पर लताइफ घर रखे हैं, इस पर लतीफे बोलते हैं, इस पर शोल किया जाता है। जैसे एक लफ्ज मौलवी पर बहस आ गई है ना, तो ये हमारी इन्हितात है, किरदार है कि लफ्ज मौलवी जो काबिल एहतराम है उसे हमने तजीक का सबब बना दिया। इसी तरह जब अहले जन्नत के इनामात की बात आती है तो हम उस पर ऐसा ऐसा तंज करते हैं कि वो कोई लिखे पढ़े में नहीं आता, लेकिन ये एक एक कलाम लिखा जा रहा है हमारे लिखे पढ़े में आ रहा है या नहीं, लिखा जा रहा है और इसका हिसाब देना हो। इसी तरह जब बात अहले जन्नत और उसकी अता की आएगी और हूर की आएगी, तो हूर एक ऐसी मखलूक अल्लाह ने पैदा फरमाई जो जन्नत में ही है। कुरान करीम फरमाता है किसी जिन्स ने उसे नहीं छुआ होगा, वो अहले जन्नत का इनाम है। और ये खुदाम जहाँ मर्दों को नसीब हो रहे हैं वहाँ खादिम की हैसियत है, ये खवातीन के भी इनाम है कि उनकी भी खादमाएं। फिर यहाँ हमारी बहस खवातीन और हूर का जो मकाम है उस पर आ जाती है, जो मुकल्लफ मखलूक इस बहर से अल्लाह की रजा के लिए गुजर कर जन्नत में दाखिल हुई, क्या अल्लाह करीम ने जन्नत की अताओं में उनके मुकाबले बयान फरमाए हैं? कुरान व हदीस में उन्हें अल्लाह करीम ने इनाम अता फरमाए हैं, उन्हें अहले जन्नत को वहां कोई दुख और रंजिश का सबब शय है नहीं। और फिर जब हम ये ऐसे फिक्रे कहते हैं और ऐसी सोचें सोचते हैं तो इसका क्या मतलब है कि दीन हक पर तंज कर रहे हैं? जहां पहले तंज करने वाले पहुंचे हैं, आज का तंज करने वाला अपना अख्तिताम वहां देखे, फुर्सत है अल्लाह करीम के हजूर माफी मांगी जाए। अगर हम दीन इख्तियार नहीं कर सकते, कमजोरी है, तो दीनी जो हुक्म है, दीनी जो हिस्से हैं, जो दीन में बयान फरमाए गए हैं, इनाम पर बयान फरमाए गए, जो तंबीह की गई, और कुछ नहीं कर सकते तो उनका एहतराम तो करते रहे। हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह एक वाक़या बयान फरमाते हैं कि यहीं बरे सगीर का, कि एक बुजुर्ग हुए हैं, उनके पास से गैर मुस्लिम का मामला लाया गया कि जी वो हालत नज़ा में है लेकिन रूह कब्ज़ नहीं हो रही, हर हरबा देख बैठे हैं, तो ये क्या मामला है, आप आए। तो ये बुजुर्गों को देखकर ऐसे होता है, मैं एक दफ़ा वहाँ कहीं था, तो इसी तरह गैर मुस्लिम जो हैं वो उनके नज़दीक जो मजहबी रहनुमा होता है वो उसको एक ही अंदाज़ से हमारे यहाँ बुज़ुर्ग कह दिया, किसी ने किसी लफ्ज़ से मनसूख कर दिया, तो वो मुझे भी अपने अल्फाज में इसी तरह अपना बुज़ुर्ग कहते हुए मुझसे बात करते थे। तो अभी जब यहाँ बात आई तो उन्होंने कहा ये जो बुज़ुर्ग साथ बैठे हैं इनसे बात करते हैं कि हमारा जो मरीज़ है इसके हाल को देखें। तो हजरत फरमाते हैं उस वाक़े में कि जब वो बुज़ुर्ग उनके पास गए, उस मरीज़ के पास, उससे बात हुई, उससे कलाम हुआ, तो उन्होंने चाहा कि मैं इसे कलमा पढ़ा दूँ, ये वक्त नज़ा में है, इसकी मौत आसान हो जाए, ये आखरत संवर जाए, हमेशा की रसवाई से बच जाए। तो उन्होंने उसे कलमे की तबलीग की, उसने कलमा पढ़ लिया। तो फिर उन बुज़ुर्गों ने फरमाया मुझे अब समझ आई कि तेरी मौत क्यों रुकी हुई है, तेरे नसीब में तो कलमा पढ़ना था, सबब क्या है। जी मैं तो गैर मुस्लिम हूँ, मैं तो जो मेरा अपना मजहब है उस पर अमल मेरा कितना है कि नहीं, क्यों नसीब हुआ। उन्होंने कहा कोई मामला है तेरे साथ। उन्होंने कहा कुछ नहीं, हाँ एक शय है कि मैं गैर मुस्लिम हूँ, मेरा तो इस्लाम से ताल्लुक नहीं था, लेकिन जब भी रमज़ान आता था मैं कभी मुसलमान के सामने खाता पीता नहीं था, अलग हो जाता था, कहता था इनकी इबादत है, इस एहतराम का मैं लिहाज एहतराम करता था और लिहाज करता था। उस लिहाज को रब्बे कायनात ने इतने मकबूल फरमाया कि मौत रुक गई, कलमा नसीब हुआ, दारे दुनिया से चला। और उम्मत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फर्द हो, फिर वो तज़हीकी पहलू इख्तियार करे दीन के बारे में, तो जितनी बड़ी अता है फिर इतना बड़ा सवाल होगा। तो जब बात आती है बड़ी आंखों वाली, तो ये मेरे अल्लाह की अता है। कामसाल लूल मकनून, पोशीदा रखा हुआ मोती, ये जो समुद्र की मोतियों की बात आती है ना सिफियों में, कहाँ गहराई पानी, फिर कहाँ उसके ऊपर ऐसा लिहाफ कि उसे अमूमी तौर पर तोड़ा नहीं जा सकता, सलीके से खोलते हैं उसके, उसमें जाकर आगे मोती मिलते हैं। ऐसे मोती मिलते हैं जिन्हें अपने संवारने का सबब इंसान समझता, जिन्हें अपने लिए एक एक दौलत के हसूल का, एक कमाई का सबब बनता है। इसी तरह अल्लाह करीम ने पर्दों में अहले जन्नत की खादमाएं रखी हैं। फरमाया जज़ाम बिमा कानू यअमलून, ये उन अमाल का बदला है जो वो करते थे। बात यहाँ आ गई ना, जहाँ हम कलाम है आज, आज हम यहाँ हम कलाम हैं, कल जाने कौन हो और कौन ना हो, कौन कलाम कर रहा हो, कौन समात कर रहा हो, कौन जानता। लेकिन इस होने का एहसास इस होने वाले ने ही करना है, तो समझ आनी है बातों की। तो फरमाया ये उन अमाल का बदला जो वो करते थे। कुरान करीम फरमाता है कि अल्लाह ने पैदा फरमाया अपनी इबादत के लिए। कुरान और हदीस से समझ आती है कि जितना कुछ उसने अता फरमाया है, तामील हुक्म में जिंदगियां सरफ हो जाए तो उसका नेमुल बदल नहीं हो सकता। माफी का जो सबब है वो सिर्फ उसकी रहमत है, उसका करम और उसका एहसान है। फिर जो अमाल इख्तियार किए, ऐसे अमाल जिस पर उसकी रहमत सादर होती है तो माफी का सबब बनते हैं। फरमाया उनके सदके तुम्हें ये भी अता कर रहा, तूने ये अमाल इख्तियार किए, तेरे नाम कैसे रहते हैं अता फरमाते। ऐसे तो नहीं फरमाया गया ना कि अल्लाह अपनी मखलूक को 70 माह से ज्यादा प्यार फरमाता, तो मामूलाते जिंदगी। अभी तो हम चौके हमारी जो नजर है या जो देखना है इन जाहिरी पहलुओं तक है, जैसे मैं कैमरे को देख रहा हूँ या नाजरीन समात करते हुए या दिखते हुए मुझे देख रहे हैं, इसकी हदूदो कयूद है। लेकिन अगर देखना बारीकी का नसीब हो तो समझ आए कि जो कश्ती टूटी वो क्यों टूटी, जो दीवार मुरम्मत हुई वो क्यों मुरम्मत हुई, और अगर किसी को मौत आई तो क्यों आई, क्या हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के वाक्य में ये बात समझ नहीं आती? तो तब हो रहा था, तो आज दुनिया कायम नहीं है, आज उसका हुक्म नहीं है, आज उसकी हुक्म उसकी मखलूक जिंदा नहीं है। तो जो हिस्से तकवीनी उमूर के हैं वो तो हमें दिखते नहीं, तो क्या कुछ सहूलतें वो अता फरमा रहा है, कैसे कैसे हमें आसानी अता फरमा रहा है। फबी आला है रब को मात करते बात, तो फरमाए जदाम बेमा कौन मलून, फिर एहसान फरमा, करम फरमा। ला यशमाऊन अफिया लगमो मलासिमा, वहां ना बेहूदा बात सुनेंगे और ना कोई गलत बात। गौर करें, हम बहन भाई बैठते हैं, दोस्त अजीज बैठते हैं, महफल सजती है, महफल तूल पकड़ती है, तंगी महसूस होना शुरू होती है। बैठे कौन? जो प्यारे हैं, एक दूसरे के रूबरू हैं, एक दूसरे के लिए बैठे हैं, महफिल का तूल पकड़ना तकलीफ दे रहा है। फिर गुफ्तगू का जेर बम, किसी को खुश कर रहा है, किसी को वो चोट लग रही है, किसने मुझे ये बात सुनाई, दूसरा उस पर हंस रहा है। तो बहाम बैठना, बहाम कलाम, बहाम बर्ताव, जब हम अपनी महफिल में देखते हैं तो बेशुमार दफा तकलीफ और तंगी का सबब बनते हैं, लेकिन जन्नत में ऐसा नहीं। उनका बैठना, उनका कलाम, उनका उनकी खुराक, उनका माहौल ऐसा होगा कि हर तरफ मुसर्रत होगी, खुशी होगी, तंगी नहीं होगी। ये इनाम है मेरे अल्लाह करीम का। और कोई गलत बात, कोई ऐसी बात, हम कहते हैं मैंने इसको जी सच सुनाया, ओ अल्लाह के बंदे, जिससे तू किसी को तकलीफ देना तेरा मकसद है और तू अल्फाज का चुनाव ऐसे कर रहा है जिससे उसको तकलीफ हो, तो इसे सच सुनाना कहेगा, इसका इससे उस मकाम से जा जोड़ेगा जहां हक और सच की बात आती है। क्या यही सच सुनाना हमने सीखा है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते अकबर से? तो वहां जो महफिल होगी, जो नशिस्त होगी, वो ऐसी नहीं होगी वहां ना बेहूदा बात सुनेंगे और ना कोई गलत बात। अब एक नुक्ता हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह इस आया करीमा की तफसीर में वो बयान फरमाते हैं, अगर इस अंदाज को दुनिया की जिंदगी में ले लिया जाए के बेहूदगी और गलती से इज्तनाब किया जाए तो मुआशरे में सुकून पैदा हो सकता है, और इसी कैफियत और हाल का इतलाक घर पर किया जाए तो घर में सुख आ जाएगा। तो गौर करें ना, हमारी तलख कलामी, जज्बातीत, सोचे समझे बगैर अमल का करना, जो फौरन समझ आए उस पर ऐसे अमल कर दें। आप गौर फरमाएं कि अगर ये चीजें ना हो, अक्सर जब ये घर के हवाले से मेरे सामने सवाल आए, बाम रंजिश के हवाले से आए, तो मैं एक बात कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि हमेशा जो दूसरी सोच है उस पर अमल किया करो, ऑलवेज एक्ट ऑन सेकंड थॉट, क्योंकि जब बंदे को पहली सोच आती है तो वो रिएक्शनरी होती है, उसमें जज्बातीत होती है, शिद्दत होती है, उसमें बदले की जो एक, एक, एक तड़प होती है, तो जो दूसरी सोच होती है वो थोड़ी ठहरी हुई होती है। तो अगर हम अपने कलाम को, अपने अंदाज को, अपने व्यवहार को इस अंदाज से ले आए कि ला यस्मऊन फिया लगमो वला तासिमा, तो ये वो अंदाज है जो अहले जन्नत की महाफिल को नसीब हो रहा है, तो जन्नत नुमा माहौल पैदा होना शुरू हो जाए। इल्ला कीलन सलामन सलामा, सवाए इसके हर तरफ से सलाम ही सलाम की आवाज आएगी, यानी हर तरफ से खुशगवार कलाम होगा, हर तरफ से बेहतरी आएगी, और एक दूसरे की बुलंदी दर्जात की दुआएं। सलाम क्या है? जब हम कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, तो क्या मतलब? तुम पर सलामती हो, अल्लाह की रहमत हो, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकात, उसकी रहमतें उसकी बरकतें हों सलामती के साथ। तो इस सलामती की दुआएं और हाल और दूसरे की बेहतरी और भलाई का चाहना, यह अहले जन्नत का मिजाज होगा। اور پھر فرمایا اصحاب الیمین, اور جو دائنے ہاتھ والے, پھر جو دوسرا درجہ ہے وہاں فرمایا ما اصحاب الیمین, اور کیا اچھے ہیں دائنے ہاتھ والے. فی سدرۃ مخضود, بے خار بیریوں میں, وطل ممدود, اور تہ بتہ کیلوں میں, وظل ممدود, اور لمبے لمبے سایوں میں, وماء مسکوب, اور پانی کے جھرنوں میں. دیکھیں دنیا میں جب پھل لیا جاتا ہے, اور بیری کی جو مثال دی گئی ہے تو اس کے ساتھ کانٹا ہے, یعنی دنیا میں کسی کامیابی کو پانے کے لیے کوئی نہ کوئی تکلیف دے مرحلہ جائے وہ گزرنا پڑتا ہے. پھل توڑنا ہے تو اس میں کانٹا ہے, پھول اٹھانا ہے تو اس کے ساتھ کانٹا ہے. لیکن وہاں کی جو عطا ہے, اس عطا اور جسے عطا کیا جا رہا ہے اس کے درمیان تکلیف نہیں ہے. تو وہاں کی جو بیری ہے اس میں تکلیف نہیں ہے. اور تہ بتہ کیلوں میں, دیکھو بیر اور کیلا, اللہ کریم نے جہاں اور نام ارشاد فرمائے اس عطا کا نام ارشاد فرمائے. اب دنیا میں بندہ موجود ہے, اسے تشبیہ دے کر, اس طرح کے پھلوں کی مثال دے کر سمجھایا جا رہا ہے, تو اس کی سمجھ کے مطابق ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ جس حال میں وہ ہے اس طرح کے حالات کا قرآن کریم بیان فرماتا ہے. اسی لیے دین اسلام کو دین فطرت کہا جاتا ہے کہ تمام فطری تقاضوں کو پورا فرما. اور یہ بیان کرنا یہ ایسا کرم ہے اللہ کریم کا کہ اپنی مخلوق میں بھی اس کی مثالیں نظر آتی. اور میں بڑے باوسوق انداز میں یہ کہتا ہوں اور سمجھتا ہوں, اللہ کریم نے حضرت قاسم فجزاد مولانا امیر محمد اکرم احوان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو یہ کرامت عطا فرمائی تھی کہ آپ جب بیان فرماتے تھے تو اگر کسی نے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی ہوئی ہے اور کسی نے سکول کا منہ نہیں دیکھا ہوا, دونوں کو بٹھا لیں, اور جو بہت پڑھا لکھا ہے وہ اس گفتگو کو سطحی گفتگو نہیں کہے گا, اور جو ان پڑھ ہے وہ یہ نہیں کہے گا کہ میرے سر سے یہ گفتگو گزر گئی. اور یہ آج بھی موجود ہے, ریکارڈنگ لگائیں اور دو طرح کے بندے سامنے بٹھا دیں, دونوں سبق حاصل کریں گے اور دونوں کا سبق مثبت ہو. تو قرآن کریم ایسا بیان فرما رہا ہے, اس کی مخلوق ہے, اس نے پیدا فرمایا, جس کو جو استعداد عطا فرمائی ہے, خالق کو نہیں معلوم تو مخلوق کو مخلوق کے بارے معلوم. تو وہ فرما رہا ہے کہ بے خار بیریوں میں, تو وہاں کانٹا نہیں ہوگا, تہ بتہ کیلوں میں. اب کیلا ایک ایسی غذا ہے کہ درخت ہے, اس کا درخت جیسا تنا ہے لیکن وہ سختی نہیں ہے. ایک ایسی خوراک ہے جسے اللہ کریم نے ایک قدرتی حفاظت دی ہے, تو سمجھ آتی ہے کہ وہاں کی جو خوراک یا پھل ہیں انہیں حفاظت الہیہ بھی ایسی نصیب ہوگی کہ یہاں تو دنیا یا میں جو گرمی اور سردی کے اثرات ہیں یا وقت کا اثر ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے, وہاں جو ہے تہ بتہ کیلوں میں ایسی خوراک نصیب ہوگا. ظل ممدود, اور لمبے لمبے سائے. تو سورج ڈھلتا ہے نا, تو بندہ جوں جوں اپنی چارپائی کرسی نشست آگے پیچھے گھسیٹتا رہتا ہے کہ شدید دھوپ ہے تو اس کے سائے کو دیکھ. تو وہاں کا جو سایہ ہے وہ ایسا لمبا ہوگا کہ ضرورت پوری کر رہا ہوگا, پھر فرد دے رہا ہوگا, میں تنگی نہیں ہوگی. اور ماحول, وماء مکسوب, اور پانی کے جھرنوں میں. دنیا میں اللہ کریم نے ایسی جگہیں پیدا فرمائی ہیں کہ بندہ مبہوت ہو جاتا ہے اس جگہ کی خوبصورتی کو دیکھ کر. اور قرآن کریم زمین و آسمان کی جو ہونا یا پیدائش یا وجود اسے دیکھنے کا فرماتا ہے کہ اس کا دیکھنا, اس کا سمجھنا نور ایمان تک پہنچاتا ہے. تو بندہ دنیا میں, آپ یقین مانے, دنیا میں پھرنے کا موقع ملا ہے, इस वतन अजीज में बेशुमार असफार किए हैं, कई कई जगह ऐसी आती हैं बंदा मबहूत हो जाता है और दिल करता है कि यहीं बसेरा कर ले, यहीं बैठे और इस खूबसूरती को देखता है। अब दुनिया में ऐसे मकामात जिन्हें दिल करता है कि इन्हीं ही देखता रहूं, तो वही समझ जो उसने हमें इस दुनिया के मुताबिकत के साथ समझाया है कि इस झरने का भी जिक्र फरमाया, लेकिन वो कैसा होगा, वो समा कैसा होगा। वफाक्यातिम कसीरा, और कसरत से फल, और कसरत से फल वाले बाग, यानी वहाँ जो कुछ है वो ऐसा कसीर है, ऐसा कसरत से है कि उसको इख्तिताम नहीं है, ये खौफ नहीं है कि जो है इसके बाद क्या होगा। तो दुनिया में अगर इस चीज़ को हम समझें तो समझ आती है कि अता फरमाने वाली वो ज़ात जिसके खजानों में कमी नहीं है, और हमें जिन्हें नूरे ईमान नसीब हुआ है ये अपने कल की खुराक को देखता है और उस परिंदे को नहीं देखता जिसके पास जिस जो शाम खा कर आया सुबह का नहीं है, जो उड़ा है तो खाली पेट उड़ा है, वापस आया तो भरा पेट आया। तो उसके हिस्से इनाम के कसीर हैं, तो ये उसकी शाने कुदरत है, उस कुदरत के जो इजहार है वहां फरमाया जा रहा है, उसे पाने के लिए यहां भी तो एतबार की जरूरत है। तो माज ख्वाब नहीं है, दीन इस्लाम हकीकत है और हकीकी जिंदगी से आशना करता है, और जिंदगी को वो रास्ता जिसे सिराते मुस्तकीम बयान फरमाया गया है उस पर चलाता है। फिर फरमाया ला मक्तूआतिन वला ममनूआ, जो ना खत्म होंगी और ना उनकी कोई रोक टोक होगी। तो ये जो मौजू हम जिस पर बात कर रहे हैं, कोई रोक टोक नहीं है। कुरान करीम फरमाता है ले जन्नत, तो जो चाहेंगे उन्हें मुयस्सर आएगा, जैसा चाहेंगे उन्हें मुयस्सर आएगा। अब इसको भी एक नुक्ता समझने की जरूरत है, अशरा मुबशरा के हवाले से जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्हें दुनिया में ही जन्नत की बशारत दी जाती है, तो इस मौजू पर जब बहस होती है तो उलमाए हक बहस करती हैं कि जब आपसे अर्ज की गई कि या रसूलल्लाह सल्लम हयात हैं जो मर्जी करें, आपने फरमाया जो मर्जी करें, तो आपके इस फरमान की शरह में उलमाए हक बहस करते हैं, वो फरमाते हैं कि उनकी मर्जी अल्लाह की मर्जी में ऐसी ढल गई कि वो चाहेंगी वो जो अल्लाह को पसंदीदा। तो दुनिया में उस अंदाज को समझते हुए जो अल्लाह और उसके हबीब ने बयान फरमाया, अपनी चाहत को परखना कि जो चाहेंगे वो चाहेंगे ही खूब, वो चाहेंगे ही आला, तो फरमाया हर चाहत हर पसंद पूरी फरमाई जाए। व फरूश मरफुआ, और ऊंचे ऊंचे फर्शों में। अब जगहें कैसी होंगी, क्योंकि जिस समा को बयान फरमाया जा रहा है जहां आज हम फितरत की खूबसूरती को देखते हैं, तो उसके लिए कोई ऊंची जगह होती है तो वो सारा मंजर नजर आता है। तो ऐसे ऐसी जगह जहां से जो है अहल नशिस्त जो है उन्हें खूबसूरत मनाजर जो है वो देखने को मिल रहे हों, खूबसूरतियां और रानाइयां वो उन तक पहुंच रही हों। फरमाया और ऊंचे ऊंचे फर्शों में, इन्ना अनशा ना उन्ना इनशा, बेशक हमने उन हूरों को इस तौर पर पैदा फरमाया। फिर जिक्र फरमाया, फजअलना उन्ना अबकारा, तो उनको कवारियां पैदा फरमाया। औरबन अतराबा, महबूबाएं हैं हम उम्र। अब देखें इंसानी मिजाज के नया खाने में कैसी सोच होती है, ज़ाहिरन वो लफ्ज़ क्या बोल रहा है और सोच के पेचो खम कैसे चलते हैं। कुरान करीम में जब फरमाया जाता है ना, और पर्दे के हवाले से नगाह के नीचे रखने को और घूंघट के निकालने को, तो अल्लाह करीम की ज़ात अलीम है, खालिक उसने पैदा फरमाया, सोचों की बारीकियां जो हैं वो भी उसके रूबरू हाजिर हैं। आज नहीं कि किसी ने सोचा तो वो जानता है, अजल से वो जानता है। हम थे नहीं तो सोचे तो फिर हमारे होने के बाद पैदा फरमाई, तो कुछ न था तो वो अजल से जानता है। तो वो जो बारीकियां सोचों की हैं उन तक किससे बयान फरमाए जा रहे हैं, वो जो चाहते हैं उनका बयान फरमाया जा रहा है। फिर मखलूक में सिंफ मुखालिफ का पैदा फरमा कर दुनिया में मखलूक को दवाम जो दिया है, उसकी नस्ल को जो इजाफा दिया है, कुरान करीम फरमाते हर शय को अल्लाह ने जोड़ा जोड़ा पैदा फरमाया। अब उस मखलूक का हमें समझ है कि नहीं है, याद उसके जोड़े की हमें समझ है कि नहीं है, लेकिन कुरान करीम हर शय की पैदाइश को जोड़ा जोड़ा बयान फरमाता। अब इस जोड़े में जो एक मुखालफ सिंफ के लिए मोहब्बत है, एक जज्बातीत है, एक 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 वो कैफियत है जिसे शायद लफ्स ना हो बयान करने को, लेकिन अल्लाह तो जानते हैं। अल्लाह करीम ने अपनी उन जो खादमाएं जो अहले जन्नत के लिए पैदा फरमाया फरमाया उनको कवारियां बनाया। और यहां एक बात याद रखिएगा कि ये जो अहले जन्नत की खूबसूरती और रानाइयां हैं इसमें कमी नहीं है, लेकिन एक उम्र होती है खूबरू होने की, बच्चे छोटे होते हैं, फिर एक ऐसी नौखेज उम्र आती है, फिर जिंदगी ढलना शुरू हो जाती है। वो नुखेज उम्र, वो चेहरा, वो वजूद, वो हरकत, वो बोलना, वो सुनना, वो तेजी न पहले थी न बाद में थी। लेकिन अहले जन्नत जवान दाखिल होंगे, खूबसूरत जवानी में दाखिल होंगे, फिर उस रानाइयों में कमी नहीं आएगी, उस खूबसूरती में कोई कमी नहीं होगी, इजाफत हो सकता है। तो इसी तरह जो वहां की आसाइश है, वहां के जो खुदाम हैं, उनके जो वजूदी हिस्से हैं वहां तक रब कायनात ने बयान फरमा दिया, फरमाया फजअलना उन्ना अबकारा, तो उनको कवारियां पैदा फरमाया, तो दवामी कैफियत जो है इस पर नसीब होती जाएगी। उरबन अतराबा, महबूबाएं हम उमर लिअस्हाबिल यमीन, ये दाने हाथ वालों के लिए। फिर यहां जो अगला हिस्सा बयान फरमाया, फरमाया सुल्लतुम मिनल अव्वलीन, इनमें एक बड़ा ग्रोह अगले लोगों में से होगा, वसुल्लतु मिनल आखिरीन, और एक बड़ा ग्रोह पिछले लोगों में से होगा। अब इस पर जब उलमाए कराम बहस फरमाते हैं तो फरमाते हैं कि साहिब ईमान दुनिया से जब बरज़ख मुंतकिल हुआ, क्याम क्यामत से गुजरा, तो जो साहिब ईमान तो गया लेकिन गुनाह बेशुमार साथ ले गया, या जायद गुनाह ले गया, तो वो जो दोजख से गुजरेगा तो वो जो तकलीफ दे अमल होगा वो उसके उस वजूद को गला साड़ देगा जो उस गलतियों में दाखिल था, जो हराम से बना था। लेकिन आखिरकार वो जो ईमान लेकर जाना ऐसी खुशबख्ती है कि आखिरकार उस सजा से निकाल कर वह अहले जन्नत तक पहुंचा देगी। तो उसमें भी फरमाते हैं जो उलमा इस पर बहस करते हैं, ये जो है ना, क्योंकि मखलूक को तीन हिस्सों में तकसीम फरमाया गया ना, तो वो फरमाते हैं कि ये जो तकलीफ से गुजर कर भी जो पहुंच जाएंगे वो भी ऐसे लोग होंगे जिन्हें अल्लाह करीम ने फरमाया है कि अस्हाबुल यमीन। अब हर एक के उसके अंदर भी फिर मदारिज हैं, दर्जे। तो कुरान करीम में जब दर्जात की बात आती है तो बेहतर से बेहतरीन बयान फरमा, हम तो दर्जात में बात करते हैं ना, कम से कम की तरफ बात करते हैं, तो कुरान करीम से अब इस बात को समझना चाहिए तो ये बेहतर से बेहतरीन की तरफ इरशाद फरमाता है। तो मदारिज में मतलब जिसका दर्जा से फिर ऊपर, इस तरह जो है चीजों को मुसबत पहलू से बयान फरमाया जाता है। तो अल्लाह करीम तौफीक अता फरमाए कि हमें तालीमात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम पर अमल नसीब हो, और अल्लाह करीम हमारे कुलूब को कैफियात से मुज़य्यन फरमाए, दुनिया में ये नसीब हो, और अल्लाह करीम के करम और एहसान से और उसकी हिफाजत ऐसी नसीब हो कि यहाँ से बरज़ख मुंतकिल होते हुए ये कैफियात हमारे साथ, बरज़ख हमारे साथ मुंतकिल हो जाए। वा आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।